शांति। वैसे भी लौकिक में भी कहा जाता है कि जैसा बाप वैसा ही उसका बच्चा होता है। ये तो हमारा पारलौकिक और अलौकिक पिता है। जिस पिता को फॉलो करने के लिए हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। उस दिन बाप दादा बच्चों को बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि तुम बच्चों को बाप समान बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, और वो है अटेंशन रूपी कार्बन। जैसा कार्बन कॉपी सहज बन जाती है, उसके लिए कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जितनी कॉपियां चाहिए उतने कार्बन रख करके आप उसकी कॉपी सहज निकाल सकते हैं। वैसा ही बाप समान बनने के लिए अगर अटेंशन का कार्बन है तो सहज हम बाप समान बन सकते हैं, क्योंकि हम सभी ने किन्होंने प्रैक्टिकल में देखा, किन्होंने अनुभव किया, अनुभव सुने, क्योंकि अनुभव सुनना भी अनुभव करना ही। तो बाबा की जीवन एक सब बच्चों के आगे सिंपल और सैंपल रही। संपूर्ण बनने के लिए बाबा के अंदर सर्व बातों की समानता थी। समानता के आधार पर ही संपूर्ण बन सकते हैं। आवाज में आना भी अति सहज और आवाज से परे जाना भी अति सहज, साकारी स्थिति भी अति सहज, आकारी फरिश्ता बनना भी इतना ही समान। एक सेकंड में आकारी बन जाना, देखते देखते साकार में आना, कारोबार करना और वापस उस अलौकिक स्थिति में स्थित हो जाना, इसका बाबा ने अपने से बहुत ही अच्छा अभ्यास किया। जिस अभ्यास के आधार पर बाबा हम सभी के लिए एक एग्जाम्पल बने, क्योंकि जिस समय पर एग्जाम्पल सामने होता है तो उसको कॉपी करना बड़ा इजी होता है। हम लोगों को तो सिर्फ कॉपी करनी है, इसीलिए हमें इतनी मेहनत नहीं है। परंतु मम्मा बाबा ने जिन्होंने अपने ऊपर मेहनत किया, औरों के लिए खुद तो तैयार हुए पर औरों के लिए भी तैयार हुए। दादियों ने खुद के ऊपर मेहनत किया, अभी हमें क्या करना है। बाबा ने हम बच्चों को संपूर्ण बनने के लिए विशेष चार बल दिए हुए हैं। जो बल प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाप में देखा, ज्ञान का बल, याद का बल, स्नेह का बल, संयोग का बल, और जिस संयोग के द्वारा ही आज हम देखते हैं कि एक ब्रह्मा से इतने ब्रह्मण पैदा हो गए। वैसे तो बाबा सर्वशक्तिवान है, उसने हम बच्चों को सर्वशक्तियां दी, परंतु सबसे पहले हम देखते हैं अगर ज्ञान का बल हमारे अंदर नहीं है। ज्ञान अमृत है, ज्ञान पढ़ाई है, ज्ञान रतन है, पर ज्ञान एक बहुत बड़ा बल, भले ज्ञान प्रकाश भी है परंतु उस प्रकाश में भी सदैव रहने के लिए शक्ति चाहिए। तो ज्ञान को हम कहां तक बल के हिसाब से यूज करते हैं वो साकार बाबा में प्रैक्टिकल में देखने को आया कि जिस समय बाबा को इस बात का निश्चय हो गया कि मुझे ये ऐसी नई दुनिया बनानी है, मुझे इस सर्व को साथ ले जाने के लिए गाइड बनना है, भले शिव बाबा है, भक्ति मार्ग में हम भगवान के गुण गाते थे परंतु भगवान के जो गुण हैं वो प्रैक्टिकल में हम बच्चों ने साकार बाबा के द्वारा अनुभव किए। वो ज्ञान का सागर है तो कैसा सागर है, और उस ज्ञान के लहरों में कैसा लहराते हुए औरों को भी साथ में ले जाता था। बाबा की जब मुरली सुनते थे सामने बैठ के ऐसा आनंद आता था, ऐसा लगता था कितनी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, और बाबा का एक एक महावाक्य सुनते सुनते दिल ठंडा हो जाता था, खुशी हो जाती थी इतनी। और बाबा उसी रुहाब से सर्व बच्चों को सामने रखते हुए, कभी कभी ऐसा होता था थोड़े से बच्चे बाबा के सामने होते थे और बाबा की मुरली बहुत अच्छी चलती थी, बाबा से पूछते थे बाबा आज तो कोई था ही नहीं, आपने इतनी अच्छी मुरली चलाई, क्योंकि आप साकार बाबा की मुरली पढ़ेंगे, अकेला शिव बाबा नहीं बोलता है, ब्रह्मा भी बोलता है, शिव भी बोलता है, वो कहता है ये मेरा तन है, मेरा मुख है, मैं तो जरूर बोलूंगा, और शिव बाबा भी कहता है कि इसका तन है तो ये तो बीच बीच में सुनाएगा, अनुभव ये सुनाता है, दुनिया के ज्ञान मैं सुनाता हूं, तो दोनों का डायलॉग बड़ा अच्छा चलता था। तो बाबा से जब पूछते थे, हम तो यही हमेशा बुद्धि में रखते थे कि हम बाप दादा से मुरली सुन रहे हैं, जैसा आत्मा और शरीर दोनों अलग होते हुए उसको अलग नहीं कर सकते आप, वैसा बाप और दादा अलग होते हुए भी उसको अलग नहीं कर सकते, वो दोनों साथ ही साथ कंबाइंड रूप की इतनी अच्छी अनुभूति है ये। तो बाबा जिस समय ज्ञान की गहराई में जाते थे, बाबा से पूछते थे बाबा आपके सामने तो कोई भी नहीं था, फिर आप इतनी अच्छी मुरली चलाई, बाबा कहते तुम क्या समझते हम तुमको देख के चलाएंगे, मेरे सामने तो जितने भी ब्राह्मण सर्विसेबल बच्चे हैं वो सब मेरे सामने इमर्ज होते हैं, मैं उन बच्चों को बैठ करके मुरली सुनाता हूं जो ज्ञान ग्रत को धारण करके, ज्ञान दूध को धारण करके सबको बैठ करके वो पिलाते हैं देते। तो बाबा खुद शिव बाबा को विचार सागर मंथन करने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान को बल जो बनाया उसका आधार विचार सागर मंथन, ज्ञान की गहराई। बाबा सिर्फ ज्ञान को ऊपर से नहीं समझा परंतु ज्ञान की इतनी गहराई में गया, जिस गहराई के कारण आत्म स्वरूप जो था वो प्रैक्टिकल में देखने में आए। जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे, आत्मा और शरीर ये दोनों डिटैच है, अलग है, अलग अलग है, हम इससे अलग होकर के कर्म कर सकते हैं, ये जो ज्ञान की पॉइंट है इसको भी प्रैक्टिकल में लाने के लिए उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता। हर एक बाबा के महावाक्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए जब तक आप उसकी गहराई में नहीं जाएंगे तभी तक उसकी अनुभूति नहीं होगी और वो शक्ति आपके पास नहीं आएगी। ये सारी दुनिया मरी पड़ी है, ये असार संसार है, इसमें कोई सार नहीं है। सदैव बाबा कहते थे कि बच्चे तुम्हारी एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति दिखाई पड़े, तुम्हें वो दो धाम दिखाई पड़ेंगे, दुख धाम तुम्हें दिखाई नहीं देना चाहिए और तुम्हारे द्वारा भी किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। तो इसके ऊपर बाबा ने जरूर अभ्यास करके, ऐसी अनुभूति करके, उस सुख धाम और शांति धाम को जैसा बाबा जिस समय वर्णन करते थे ऐसा लगता था जैसा प्रैक्टिकल में हम बैठे हुए। आप उस दिन के अव्यक्त बाबा की मुरली सुनो जो बाबा ने स्वर्ग के ऊपर चलाई है, जैसा बच्चों को साथ में लेके चला गया है स्वर्ग, भले खुद नहीं जाता है स्वर्ग परंतु बच्चों को सैर करा दिया। तो ये सिर्फ अकेला नहीं कर सकता है, दोनों मिलके कर। तो ये जो ज्ञान का बल है जिसके आधार पर ब्रह्मा बाप एक सेकंड में नष्टो मोह स्मृति लब्धा बना। अगर ज्ञान का बल नहीं होता था तो नष्टो मोह नहीं बनता, स्मृति स्वरूप नहीं बन सकता था, परंतु ज्ञान उसकी बुद्धि में फिट बैठ गया और वो फिट बैठने के कारण प्रैक्टिकल में आ गया। तो हमें भी देखना है, बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे सुनना और स्वरूप बन जाना, इसकी समानता है, या सुनना अलग और स्वरूप नहीं बनना। अगर इसकी समानता नहीं है स्वरूप बनने की तो बाप समान नहीं बन सकते। सोचना बोलना और करना इसकी समानता, समान बनना माना ही सब बातों की समानता चाहिए। जैसा अभी मैंने आपको बताया बाबा सिंपल था इसीलिए सैंपल, बाबा कितना सिंपल था क्योंकि बाबा के होते हुए भी कितने मकान बने मधुबन में, पर बाबा ने बच्चों का इतने फोर्स के बाद भी बाबा ने मकान बदली नहीं किया। बाबा को कहते थे बाबा ये एरोप्लेन में रहो ना, ये जो मकान है यहाँ रहो, ये दूसरा मकान है इधर रहो। बाबा बोलता था नहीं, शिव बाबा भी तो पुराने मकान में आता है, मैं नए मकान में नहीं रहूंगा, ये तो बच्चों के लिए मैंने बनाया। तो देखो कितनी त्याग की वृत्ति कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इसकी कुछ आवश्यकता नहीं है। अभी हम अपने को चेक करें कि सचमुच हमारे अंदर इतनी त्याग की वृत्ति है। कभी कभी चलते चलते जिन्होंने अपना जीवन ईश्वर अर्पण कर लिया है, काफी बरस हो गए हैं, जब भी देखते हैं दूसरा कोई है नया है उसको थोड़ी हमारे से ज्यादा सेल्वेशन है, हमको थोड़ी कम है, तुरंत उसकी कंपेयर बुद्धि में चालू हो जाती, क्यों हमको, हम इतने वर्षों से चल रहे हैं हमारे पास ये सेल्वेशन नहीं है, इसके पास कैसे, मेरे को भी तो मिलना चाहिए ना, इसको क्या कहेंगे बताओ। क्या हमने कभी बैठ करके इसके ऊपर विचार किया है कि हमने जो त्याग किया है, हमने जो तपस्या किया है उसकी वैल्यू सिर्फ इतनी है साधन, उसकी यही वैल्यू, उसका यही रिटर्न है जो मुझे संकल्प चला, चलता है या नहीं चलता है बताइए। चलता है तो हाथ ऊपर करो, लज्जा नहीं करो, चलता है ना, आज से बिल्कुल नहीं चलाना। मैं ये खुद को हमेशा पाठ बहुत पक्का करा था, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी काम रहा, सचमुच इस ज्ञान की पॉइंट को मैंने प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि मेरे को जो पाना था वो तो मैंने पा लिया। अभी मेरे को क्या चाहिए? मान चाहिए, शान चाहिए, मोटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, क्या चाहिए? किसके लिए बैठे हैं हम? बाबा के क्यों बने? बाबा ने अपने पास क्या रखा? हम आपको बतावे, जिस दिन से शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रवेशता हुई उस दिन से बाबा ने पैसे को हाथ नहीं लगाया। कभी कोई भी आके बच्चे बाबा के आगे रखते थे, बाबा को कहते थे, बाबा ये मेरा जमा करो। बाबा कहता था, जाओ सेंटर खोलो जाओ। बाबा कभी हाथ नहीं लगा। बाबा को मालूम ही नहीं था पैसा क्या। आप लोगों को मालूम होगा, बीच में अपने पास वो पैसा निकला था, तांबे के पैसे निकले। तांबे के पैसे में भी होल का एक पैसा निकला था, याद है? देखा है किसने? देखा है? हाथ ऊपर करो। देखा हुआ है। तो ब्रजेंद्रा दादी थी ना, वो बहुत रमणीक थी, तो उसने, उसको मालूम है बाबा कभी देखा नहीं, तो इसने क्या किया, वो पैसा लिया, बाबा क्लास पूरा किया, बाबा के हाथ, बाबा बोला हाथ, बाबा हाथ सामने करो, बाबा ने हाथ सामने किया, इसने वो पैसा बाबा के हाथ पर रखा, बाबा ने ऐसा फेंक दिया। बाबा ने कहा, ये क्या स्टो की वाइशल लेके आई? तो हंसने लगे सभी। तो कहा, देखो त्याग, त्याग क्या होता है वो देखो आप, समझा? बात नहीं देखो। बाबा ने कहा, ये क्या है, ये काय को लेके आई? तो कहा, बाबा ये वाइशल नहीं है, ये पैसा है, पैसा, अब ये पैसे निकले। बाबा इतना गंभीर हो गया, बाबा ने कहा, अरे भारत की ये हालत हो गई? बाबा ने भारत को हीरे जवाहरातों के महलों का मालिक बनाया, आज भारत के पास इतना भी तांबा नहीं जो पूरा एक पैसा भी बना सके, उसमें भी होल कर दिया वो। देखो ये है ज्ञान, ये अर्थ आप और हम नहीं निकल सके। तो बाबा ने सिर्फ ज्ञान बोला नहीं, बाबा ने उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में लाया। तो ऐसी वैराग्य वृत्ति बाबा को हमेशा यही रहा कि जो कुछ है मेरे बच्चों के लिए, आज नाम हुआ तो किसका हुआ? बाबा ने कभी कहा मैंने किया? मेरे बच्चों ने किया। आज दुनिया में भी नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम है। शिव बाबा तो अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ, हमारा ब्रह्मा बाबा तो है ही एकदम महागुप्त। हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के साथ ब्रह्मा का नाम लेते, पर वैसा कहाँ इतना ही होता है। परंतु बाबा प्रैक्टिकल में गुप्त रहा। बाबा ने कभी अपना फोटो नहीं निकाला, बोलो? फोटो नहीं निकालने दिया बाबा के, कहाँ है ज्यादा फोटो। हम पार्टी लेके आते थे बाबा के पास, और हमारे खुद की दिल होती थी बाबा के साथ फोटो निकाले, तो कहते थे बाबा अभी खुद की बोलने की तो ताकत नहीं। फिर बोलते बाबा ये इन सभी का दिल, दूसरों का भी होता था, बाबा हमारे क्लास वालों का दिल है आपके साथ फोटो निकाले। बाबा कहता है छठ भगत, ये तो भक्ति मार्ग की बात है, फोटो क्या करेंगे, किसका निकालेंगे? शिव बाबा का फोटो निकलता है? हम कहे नहीं निकलता है। फिर ब्रह्मा का फोटो निकालेंगे? फिर क्या जवाब देंगे? ब्रह्मा ही तुमको याद आएगा, फिर तुम मरेगी तो ब्रह्मा याद आएगा, शिव बाबा याद नहीं आएगा। अरे बोलो, फोटो तक नहीं निकालने दिया। आज हमारे को कितना शौक है इन बातों का, नहीं हम थोड़ा हरेक बात समान बनना है ना, हरेक बात सोच। बाबा की लाइफ इतनी सिंपल, नहीं तो क्या ठाट था उसका रहने का। परंतु जब ये बाबा मिला तो कुछ नहीं चाहिए, बस अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली गधाई, बादशाही क्या परंतु गधाई। हाँ, तो इतनी त्याग वृत्ति, जब हम देखते हैं कि हमारे को बाप समान बनना है, हमारा बाबा इतना ऊंचा, फिर हमारे अंदर ये भावना क्यों, उसको निकालो। अगर हम ज्ञान की गहराई में जाए, अच्छा दूसरी बात देख, अभी बाबा ने एक बारी दुनिया छोड़ी, उसके बाद उसने मुड़ के कभी किसी को देखा? सब लौकिक अलौकिक सब एक हो गए, सब उसके बच्चे हैं, बेहद का बाप बन गया। कभी उसमें कोई भावना नहीं आई। बाबा ने अपना सेकंड, अपना संकल्प, अपना तन, अपना मन विश्व कल्याण के लिए अर्पण किया। हम लोगों ने भी यथाशक्ति जिसको जितना करना था उतना, जिसके पास जो था उसने उतना अर्पण किया। अभी एक बारी जब हमने ईश्वर के अर्पण किया, उसके बाद हम अपना समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, ये सब उसका हो गया। जब उसका हो गया तो हम उस अमानत में ख्यानत तो नहीं डालते। अगर हमारा श्रीमत के विरुद्ध एक सेकंड भी जाता है, एक पाई भी जाती है, उसकी रिजल्ट जहां हमारा धन होगा, गीत क्या है हमारा, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन हो। कभी कभी किन किन भाइयों में ये होता, जब हम उसके अर्पण कर दिया, उसके श्रीमत के बगैर हम यूज नहीं कर सकते। अगर हम यूज करते हैं, अगर हम इधर उधर लगाते हैं धन को भी, तो धन हमारे मन को खींच के ले जाएगा, मन जहां जाएगा वहां हमारा तन भी जाएगा और हम बेजार हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप के समान बनना है ना, उसके उदाहरण लो आप। ब्रह्मा बाप ने ऐसा कभी नहीं किया। वो तो हम बच्चों के आगे एकदम सामने ऐसा खड़ा रहा। तपस्या किसको कहते हैं, तपस्वी जीवन किसको कहते हैं, स्मृति स्वरूप किसको कहते हैं। बाबा जिस समय नई दुनिया का वर्णन करता था, अरे कभी तो ऐसा लगता था जैसा एकदम श्री कृष्ण अभी अभी शरीर छोड़ूंगा मैं जाकर के मिचनू बनू। इतनी स्मृति बाबा की पावरफुल हो गई। ऐसा नहीं था बाबा कोई गंभीर था, माना ये नहीं बाबा रुखा सुखा था, ऐसा नहीं। बाबा रमणीक भी इतना ही था, परंतु उसके साथ साथ गंभीर भी इतना ही। बच्चों को हंसाता भी था, बहलाता भी था, परंतु अक्कल भी बराबर देता था कैसा चलने का। कोई भूल तो करके देखे। मेरे को याद है अच्छी तरह से, हमारे पास एक लड़की आती, बहन आती थी, उसने 40 वर्ष के होने के बाद शादी किया। अरे क्या बाबा ने मुरलियां चलाई, बात मत पूछ। बोला बुढ़ी ने जाके अभी शादी किया, ये किया, मुरली में सारा चलता था बाबा। सावधान करने के लिए इतना पक्का कराया बाबा ने, बात मत पूछ। अगर देखता था इधर उधर किसी ने कुछ भूल किया तो तुरंत सावधान करता, पर प्यार भी इतना ही करता था, इसीलिए उसकी बातें सब अच्छी लगती थी। तो बाबा ने प्रैक्टिकल में ज्ञान को अपनाया, ज्ञान स्वरूप बन गया, ज्ञान सागर के साथ रह रहे। मम्मा ने भी तो यही किया, इसीलिए तो ज्ञान की देवी गाई गई। क्यों उसको देवी बोलते, सरस्वती के हाथ में वीणा क्यों बताते? क्योंकि उसने ज्ञान के जो भी रत्न थे उन रत्नों को प्रैक्टिकल जीवन में धारण किया, इसीलिए वो ज्ञान की। आज भी आप स्कूलों में कॉलेजों में देखो, उसकी पूजा के बगैर विद्या ही नहीं चालू होती है देना। उसने विद्या को इतना धारण किया, अपनाया। तो हमारे को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट है या इन बाहर की बातों में हमारा इंटरेस्ट? कभी कभी क्या होता है, चलते चलते हम क्या समझते हैं, हम तो बाबा के बन गए ना, अभी बाबा हमारा हो गया, हम बाबा के हो गए, फिर ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। नहीं देखो, मम्मा बाबा को और हमारे सारे ईश्वरीय परिवार को 101% मालूम है कि ये दो नंबर जो है वो मुकरर है, परंतु उन्होंने मुकरर होते हुए भी क्या किया, कितनी मेहनत की। मम्मा जिस समय पर आई पहले दिन ही, जब चप्पल उतार रही तभी बाबा ने कहा ये कलप पहले वाली राधे बची आ गई। उसको ताट लग गई मामा को, चिंता हो गई, मैं राधा हूं, मुझे राधा बनना है, पुरुषार्थ में लग गई। और आप और हम अगर सुन ले तो हम बोले अरे हम तो बनने वाले ही है ना, मेहनत काहे को करेंगे, हम तो चादर ओढ़ के सो जावे आराम से। तो जब ये हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा है कि हमें मम्मा जैसा बनना है, बाबा जैसा बनना है, तो लक्ष्य ऊंचा है तो उनका क्या किया उन्होंने जो ऐसा बने, उन्होंने कौन सी मेहनत किया, अपने ऊपर मेहनत किया, खुद को बनाया पहले, खुद को बनाने के बाद जब खुद बन गए तो और उनको देख करके आप ही बनना चाहिए, इतना ब्राह्मण परिवार कैसा बन गए, देख करके बनाना। देखो ओ, मम्मा बाबा उनके सामने था, दादियों ने उनको फॉलो किया, हम लोगों ने दादियों को फॉलो किया, फिर हम एक दो को फॉलो करना चालू किया, तो एक दो को देख के बनते हैं। तो ज्ञान का बल ये बहुत बड़ा बल है, आप इसके ऊपर विचार करना, इसके ऊपर पॉइंट्स निकालो, आप बहुत अच्छी बातें मिलेगी आपको कि ज्ञान है क्या, कैसा उसको बल बना करके हम चला सकते हैं, ज्ञान ये शस्त्र है, हम उसको कैसा यूज कर सकते। इसीलिए पहले बाबा ने ज्ञान का बल भरा, फिर दूसरा क्या भरा हमारे अंदर, योग का बल भरा, क्योंकि योग ये अगन है। विकर्म विनाश करने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए अग्नि की आवश्यकता, अव्यभिचारी याद, एक की याद, निरंतर याद, पावरफुल याद, जिसका इफेक्ट हम प्रैक्टिकल में देखा, जब बाबा के कमरे में जाते थे तो जाने वालों के भी संकल्प स्टॉप हो जाते। तो ज्ञान को बाबा ने इतना, या योग को इतना इंपॉर्टेंस दिया, इतनी तपस्या किया ना। और जितना ज्ञान और योग को प्रैक्टिकल में लाया, बाबा के अंदर वो स्नेह का बल भी इतना ही था, बाबा के स्नेह के सूत्र में ही तो हम सब बांधे गए। किस में बांधे, आप किसके पीछे आए? आज हम देखते हैं कोई ज्ञान के लिए नहीं आया है, प्यार के लिए। आज फॉरेनर्स हैं, उनका विचारों का धर्म अलग, उनकी जाति अलग, उनकी भाषाएं अलग, उनकी मर्यादाएं अलग, आज क्यों भाग-भाग के आते हैं? क्योंकि यहां पर हमें निस्वार्थ प्यार मिलता है, यहां हमको रूहानी प्यार मिलता है। तो बाबा ने ऐसा स्नेह का बल पैदा किया खुद में और बच्चों में, जिस स्नेह के आधार पर हमारे अंदर सहन करने की शक्ति है। स्नेह का बल नहीं होगा तो सहयोग का भी बल नहीं होगा, सहन करने का भी बल नहीं होगा। जिससे स्नेह होता है उसको सहयोग दिया जाता है, सहयोग देने के लिए है और लेने के लिए सहन जरूर करना पड़ेगा, सुनना जरूर पड़ेगा। तो बाबा ने प्रैक्टिकल में ये किया ना, कितना सहन किया। फॉरेन के पेपरों में आया कि एक दादा लेखराज है, उसको 16,108 रानियां चाहिए, उसमें से 500 मिल गई है और बाकी है, फॉरेन के पेपरों में। कितना इतना कुछ सहन करें ना। आज देखो, आज हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए कोई थोड़ा भी कुछ बोलता है, फील होता है नहीं होता है? आप होता है नहीं होता है? सबको फील हो, अरे हमारी संस्था के लिए ऐसा कैसा बोला। ये तो डायरेक्ट बाबा को, उसको पर्टिकुलर उस व्यक्ति को बोला, परंतु बाबा ने उसका भी कोई फील नहीं किया। आज थोड़ा भी अगर किसी के लिए कुछ बोलेंगे तो कितना ये हो जाता है, मेरे लिए ऐसा बोला, अच्छा मेरे लिए ऐसा बोला, और बाबा के लिए इतना सब कुछ बोला, फिर क्या किया? फिर घबराया बाबा, कितनी बदनामी हो रही है मेरी, सब लोग क्या बोलेंगे मेरे को, कोई परवाह ही नहीं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए, उसी अलाई मस्ती में, अलालोक मोलाई मस्ती, बाबा कहता था इसको, ये मोलाई मस्ती चढ़ी हुई है इसको, इसको और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो बाबा ने प्रैक्टिकल में मेहनत किया अपने ऊपर, योग की मेहनत किया, ज्ञान की मेहनत किया, और स्नेह के आधार से स्नेह के सूत्र में सारे ईश्वरीय परिवार को बांध करके रखा। उसके लिए त्याग भी बहुत बड़ा करना पड़ा। जब सबको बांध करके चलना होता है, औरों को आगे करना पड़ता है, पहले आप करना पड़ता है। और जब स्नेह होता है तो किसी की कमियां, ये कमियां नहीं लगती, माफ की जाती है। तो इसीलिए हमारा ये ईश्वरीय परिवार, हम सब एक ही परिवार के हैं, तो एक परिवार के होने के कारण हमारा इतना आपसी स्नेह और सारे विश्व के साथ स्नेह, क्योंकि विश्व को हमें सहयोग देना है, सेल्वेज करना है, सबका बेड़ा जो डूब गया है उसको पार लेके जाना है, स्नेह के बगैर कौन करे। तो बाबा ने ये बल बच्चों में भरा, प्रैक्टिकल में करके बताया कि कैसा आप विश्व का कल्याण कर सकते। ये शक्ति बाबा ने बच्चों में भरी। और साकार बाबा को आप देखेंगे, इतना सिंपल बाबा को कभी कोई ऐसा वैसा कुर्ता भी अच्छा बना के बाबा बोलेगा मैं नहीं पहनूंगा, ये मैं नहीं पहनूंगा। बाबा की तो जो ड्रेस थी, बाबा अपनी ड्रेस बदली करने वाला नहीं। तो लोग तो कितनी डिग्री बढ़ती है, उनकी ड्रेसेस बदली होती रहती हैं। तो प्रैक्टिकल में सिंपल, एकदम सिंपल। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये रहन सहन में सिंपल, अब संकल्प भी, संकल्प भी एकदम प्लेन, ज्यादा संकल्प नहीं। जो कम से कम संकल्प उठाते हैं उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आते, जो बहुत संकल्प उठाते हैं ना उसके आगे ज्यादा प्रॉब्लम आती। इसीलिए अपने माइंड को भी, अपने नेचर को सरल बना करके है, कम से कम हमें संकल्प उठाने हैं, इसकी हम लोगों को खास अपने ऊपर अटेंशन देने की आवश्यकता। देखो ब्रह्मा बाबा में सेवा की कितनी लगन, मम्मा में सेवा की कितनी लगन, लास्ट श्वास तक सेवा करके गए। जो शास्त्रों में बताते हैं, दधीचि ऋषि ने अपनी यज्ञ में हड्डी हड्डी दे दिया। बाबा को कभी भी, साकार बाबा को यज्ञ की एक पाई भी वेस्ट होती थी तो नहीं चलता। कोई वेस्ट करेगा ना, बाबा तुरंत सावधान कर। मधुबन में जब सब्जियां आती थी, बाबा खुद आके खड़ा होता था, नहीं तो क्या करते, सब्जी बनाने वाले ऊपर ऊपर से निकाल लेंगे और नीचे का सड़ता रहेगा, वो सारा निकालने को लगाएगा, बोरियों में से निकालो सारा रखो, फिर उसकी कैटेगरी बनाएगा, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर करेगा, ऐसा रमणीकता से खेल में खेल, परंतु बचत में बचत हो जाएंगे। प्रैक्टिकल में ऐसा करके बताएंगे और सावधानी देगा, बच्चे देखो ये यज्ञ है, यज्ञ में जो भी करता है उसका एक का लाख गुना बनता है, और यज्ञ में से जो भी नुकसान करता है उसका एक एक का लाख गुना वेस्ट होता है। इसीलिए कभी भी वेस्ट नहीं करना, ये फुड़ी फुड़ी तला होता है। इस यज्ञ की तुम्हें बहुत कदर करनी है, क्योंकि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला यज्ञ। मन इच्छित फल है ना, हमको मनुष्य से देवता बनना है, इस यज्ञ से हम बन के निकल। तो इस यज्ञ की हमें कितनी कदर होनी चाहिए। तो हम अपने से पूछे, मेरे को इस यज्ञ की कदर है कि मेरा यज्ञ है। कभी कभी हम देखते हैं वर्षों तक रहते हैं, फिर बोलेंगे या आपकी ये बात, आपका ऐसा, आपका सेंटर, आपका ये, ऐसा क्या बात करें, आपका मधुबन, आपका मधुबन तो आपका क्या है, मेरा घर, घर मेरा, अगर घर उधर मेरा होगा तो ये घर मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब ब्राह्मणों के एड्रेस क्या है, यज्ञ है ना, हम सब ब्राह्मणों के एड्रेस मधुबन है। जैसे आत्माओं के एड्रेस परम धाम है, वैसे साकारी में ब्राह्मणों के एड्रेस है मधुबन। तो क्या मधुबन से हमारा इतनी अटैचमेंट है? बाबा को जो इतना मधुबन के लिए था और बाबा इतना बच्चों का ध्यान खींचवाता था, हमें भी मधुबन के लिए इतना प्यार है, स्नेह है। अगर हम इतना ही स्नेह रखते मधुबन के लिए तो उससे क्या है, स्नेह अगर मधुबन से होगा तो मधुबन वाले बाबा से भी जरूर स्नेह होगा ना। स्नेह ये बहुत कुछ करता है, स्नेह ही सहयोग दिलाता है। तो हम जितना जितना स्नेह करते हैं उतना उतना हमको सामने से सहयोग मिलता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र है। कभी कभी कुमारों को ऐसा लगता है, पता नहीं अभी ठीक है, अभी जो है वो चल रहा है, चलते रहे, भले कुछ भी हुआ तो भूल हुई, ये हुआ, चुप बताया नहीं, किया, ऐसा नहीं। जितना हम बाबा के आगे क्लियर रहते हैं उतनी हमारी बुद्धि की लाइन क्या होती जाती है, क्लियर होती जाती। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे से कुछ भी नहीं छुपाता हूं, फिर तुम मेरे से क्यों छुपाते? बाबा कुछ नहीं छुपाता है, बाबा सब हमको बता देता है। तो हमारा भी काम है बाबा को सब बता करके एकदम क्या हो जाना, हल्का हो जाना, अपने मन को एकदम क्या कर लेना, हल्का कर ले। हल्की चीज तो ऊपर जाएगी ना, नीचे नहीं रहेगी। तो सहज ही बाबा की याद रहेगी फिर, नहीं तो क्या होता है, कोई पुरानी बातें, पराई बातें, इसमें हमारा समय बहुत वेस्ट जाता। आज भी बाबा ने कहा ना, अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाओ। ऋषि मुनि तो जो तपस्या करते हैं वो गुफा में बैठ के करते हैं ना, तो तुम्हारी कौन सी गुफा है? तुम्हारी अंतर्मुखता की गुफा है ना। तो जितना जितना हम अंतर्मुखता की गुफा में रहते हैं, आंतरिक स्थिति में स्थित रहते हैं, उतना उतना हमारी तपस्या जो है वो पावरफुल बनती जाती। और धीरे धीरे ये आप हरेक कोई अपने को चेक करो कि ऐसा होता है या नहीं होता है। धीरे 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 सब बातों से बुद्धि हटती जाती है, किसी बात में इंटरेस्ट नहीं रहता है, एक ही बात में इंटरेस्ट रहता है, बस मैं और बाबा। क्योंकि हम यात्रा पर है तो जितना जितना आगे जाते हैं हम, उतना उतना बाबा की आकर्षण बढ़नी चाहिए हम लोगों को। अगे अगर 10 बरस हमारा जो अनुभव था आज भी अगर वही अनुभव है, इसका मतलब क्या हो गया? अभी संगम युग पर तो गिरती कला तो होती नहीं है, परंतु ठहरती कला हो जाती। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला, हमारे कारण सर्व का भला होता है। हम जितना जितना चढ़ते उतना सर्व का भला होता है, परंतु अगर हम नहीं चढ़ते हैं, ठहर जाते हैं, तो क्या कहेंगे उसको? हमारे को देख के जो दूसरे कच्चे पिक्के वो भी ठहर जाते हैं। इसका कारण क्या है? पुरुषार्थ में चलते चलते थकावट आती है। बाबा कभी थका नहीं, बाबा को कभी थकावट नहीं हुई। बाबा तो यहां तक बच्चों को हल्का करने के लिए सिखाते थे, अरे मैं बाबा बैठता हूं, बाबा को याद करता हूं, बाबा मैं आपके साथ भोजन खा रहा हूं, मैं भी भूल जाता हूं, फिर मैं याद करता हूं, थकता नहीं है। मैं शिव बाबा को कहता हूं, शिव बाबा ये आपका रथ है ना, आप इसको स्नान कराओ। वो बोलता है मैं काय को कराऊंगा, तुम खुद ही करो। तो बाबा युक्तियां बता, देखो मैं कैसे याद करता हूं शिव बाबा को, क्योंकि हम लोगों का बाबा के साथ बड़ा गहरा संबंध है। तो ये बाबा हम बच्चों को सिखाता था कि कैसा, देखो मैं कैसा याद करता हूं बच्चा बनके, वैसा तुम बच्चे भी ऐसा ही बाबा को याद करो, ऐसा सहज रीति से याद करते हैं। अगर सारा समय हमारे को बाबा से बातें करने की आदत पड़ जाएगी ना, फिर और फालतू बात करने का हमको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। बाबा कभी भी दूसरी कोई बात नहीं करता था, जो भी जाएगा आत्मोन्नति की बात करेगा, मम्मा बात करेगी आत्मोन्नति की बात करेगी। तो हम भी आपस में जब ही मिलते हैं, आज भी देखो हम जानकी दादी के पास कभी भी जाते हैं, कैसी भी उनकी तबीयत होती है, परंतु वो समझती जो मेरे पास आया उसको कोई ना कोई ज्ञान रतन मेरे को देने का ही है, आप लियो या नहीं लियो आपकी मर्जी, पर वो देगी जरूर, आप कुछ ना कुछ जरूर सुनाएगी कि कोई ना कोई इनको बताना ही है मेरे को, क्योंकि बाबा ने मेरे को बहुत कुछ दिया हुआ है, मेरा काम है इनको बढ़ना। तो ये स्नेह की निशानी, कि जैसा मेरा भला हुआ वैसा इन आत्माओं का भला हो। तो अगर हमको पढ़ाई के साथ लगन है, अगर हमारा पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ प्यार है, अगर हमारी एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, अगर अटेंशन है, तो बाबा के समान बनने में देरी नहीं लगती। परंतु हर एक बात में समानता मिला, जैसा बोलना करना दोनों भी समान, सोचना करना दोनों समान हो, समान लाओ। जैसा जैसा हम समानता लाते हैं वैसे वैसे समान बाप समान बनते जाते। कभी कभी कोई क्या करता है, बहुत लंबी चौड़ी बातें सोचता है, करेगा कुछ भी नहीं। सोचेगा बहुत, ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फिर देखो ओम शांति। अरे तुमने बोला ये करूंगा ये करूंगा, हाँ वो बोला मैंने पर हुआ नहीं कुछ। तो पुरुषार्थ के बारे में ये वो करते हैं, सेवा के बारे में भी ऐसा ही होगा, पुरुषार्थ के बारे में भी ऐसा ही होगा, बहुत सोचने का और करने का कम नहीं। इसमें हमारी एनर्जी वेस्ट जाती है, भले विक्रम नहीं बनते हैं परंतु इसमें हमारी एनर्जी वेस्ट जाती है। और सबसे बड़ी बात तो एनर्जी है, शक्ति है ना। एक तरफ हम बाबा से शक्ति लेते हैं और दूसरी तरफ अगर हमारा फालतू चिंतन में समय चला जाता है तो क्या हो जाता है, आत्मा कमजोर होती जाती है। तो हमें कमजोर नहीं बनना है, हमें शक्तिशाली बनना है, हमें बाप समान बनना है। इसीलिए ये अपने साथ पक्का कर लो कि श्रीमत के सिवाय ना हमको कुछ सोचना है, ना हमारे को कुछ बोलना है, ना हमको कुछ करना। कौन क्या करता है वो मेरे को नहीं देखता देखना है। किसको क्या मिले मालूम है, हमारे को ब्रिजेंद्रा दादी इतना पक्का कराती थी, वो कहती थी देखो यहाँ तुम जो सेल्वेशन लेंगे ना, वो इसीलिए पक्का हो गया हम लोगों, यहाँ जो तुम सेल्वेशन लेंगे ना तुम्हारा भविष्य में से कट हो जाए। देखो 21 जन्मों की रजाई है ना बाबा, हम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता है। सतयुग के कितने जन्म है, 8, त्रेता के 12, दोनों मिलके कितने हो गए, 20, और ये एक संगम का एक। तो अगर यहां ही हम भोग लेते हैं उसको तो क्या हो जाता है, इसको बाबा कहता है कच्चा फल खाना। कच्चा फल खाते हैं तो क्या होता है, कच्चा आम खा के देखा है ना, दांत खट्टे होते हैं नहीं होते, तो वैसा ये कच्चा फल स्वीकार नहीं करो कभी। कच्चा फल क्या है, साधन। कच्चा फल क्या है, नाम मान शान। मनुष्य खुश हो जाता है, अरे मेरा तो बहुत नाम हो गया, नाम ही चाहिए तो दुनिया में जाओ, मिलेंगे बहुत नाम मिलेगा, मान मिलेगा, शान मिलेगा। यहां किसका काम, किसका कर रहे हैं हम बताओ, शिव बाबा का काम कर रहे हैं। जिसका काम कर रहे हैं उसका नाम होगा या मेरा नाम होगा। आज देखो जिसकी दुकान होती है, जो सेठ होता है उसका नाम होता है, सेल्समैन का नाम होता है। तो हम क्यों इच्छा रखनी चाहिए हमारा नाम होवे, हमारे को ये करना है कि हमारे बाबा का नाम कैसा वाला होवे, सबको बाबा का नाम कैसा मालूम पड़े, सबको कैसा पता पड़े कि बाबा इस सृष्टि के ऊपर आया। उस दिन बाबा ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, बाबा ने कहा ये जो सब धर्म वाले कहते हैं गॉड इज वन, ये कहां से संदेश लेके जाते हैं, यहां से लेके जाते हैं, यहां इनको सबको मालूम पड़ेगा हम एक हैं, वो एक है, हम उसे एक के हैं। ये यहां लास्ट में इनकी बुद्धि में ये सब बैठेगा और ये संस्कार ये लेके परम धाम में जाएंगे, और जब द्वापर में अपने अपने समय पर उतरेंगे तभी ये इमर्ज हो गए इनके संस्कार, गॉड इज वन। आज देखो सब धर्म वाले क्या बोलते हैं, गॉड इज वन। उनके अंदर यहां से संस्कार पड़ेंगे, उनके अंदर पड़ेंगे तो हमारे अंदर जो दैवी संस्कार पड़ते हैं वो यहां से ही पड़ते हैं। तो इसीलिए हमको जो देवता बनना है, देवता आप हमेशा एक एक शब्द का अर्थ देखो, देवता माना देने वाला। बाबा हमको लेवता नहीं बनाता है। तो अगर हमारे को कोई ऐसी लेने की इच्छा होती है कि कोई भी रिटर्न, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम देवता कैसे बनेंगे। सदैव देते रहो, देखो देने का कितना मान है। आज चांद सूरज धरती को रोशनी देते हैं, इसीलिए लोग उनको देवता मान करके उनकी पूजा करते, क्योंकि वो सेवा करते हैं ना। बाबा कहते हैं तुम्हारा जन्म देवताओं से भी ऊंचा है क्योंकि तुम सेवा करते हो, सेवा करते हो माने देते हो। बाबा ने कभी बोला क्या तुम लेते हो इसीलिए तुम्हारा मान है? लेने वाले का मान नहीं होता है, देने वाले का मान होता है। तो आप जितना औरों को देंगे उतना उतना आपको स्वतः ही मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं। तो ये मन में जो थोड़ी भी इच्छा आती है या दूसरे से कंपेयर करके उदासी आती है वो कभी भी नहीं आनी चाहिए। ड्रामा के अंदर हीन भावना या अहंकार की भावना है ही नहीं वास्तव में, ड्रामा इतना एक्यूरेट बनाऊ। परंतु मनुष्य उस ड्रामा को भूल जाते हैं, जिसके कारण क्या होते है, कभी हीन भावना आ जाती है ऊपर वालों को देखेंगे और कभी ये नीचे देखेंगे तो फिर क्या होता है, अहंकार आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, स्थिति डगमग होती है। तो हमारी स्थिति, हमें बाबा के समान बनना है, माना हमें अपनी स्थिति को एक रस रखना है, उसके लिए अटेंशन पूरा रखना। अटेंशन रूपी पहरा अगर पूरा है तो सब सर्व प्राप्तियां स्वतः ही होती रहे। अलबेलापन नहीं आवे, आलस नहीं आवे, चलते चलते थोड़ा ठंडा हो जाते हैं। इसीलिए देखो बीच बीच में ये संगठन करते हैं कि भाई कोई भी ठंडे नहीं हो, सदैव चुस्त रहे। तो क्या होता है, संगठन बल देता है ना सबको, उससे बल मिलता है, शक्ति मिलती है। तो इसीलिए जो भी है वो यहाँ ही स्वाह करके जाना है। और आप लोगों को तो सेवा स्थानों पर रहने वाले हैं, सेवाएं करने वाले, जहां भी जो है यहाँ रहने वाले या वहां रहने वाले, तो सब उसी ऊंची दृष्टि से देखते हैं कि हम नहीं त्याग कर सके, देखो कैसा सब कुछ छोड़ के बैठे। तो जिस दृष्टि से हमको देखते हैं, अगर हमारी स्थिति वैसी होगी तो उसको क्या लगेगा, उसके ऊपर विश्वास बैठे। तो इसीलिए जो बाबा ने किया है वो हम लोगों को करने का है, बाकी हमको कोई नया रास्ता नहीं अपनाने का है। नए रास्ते पर चलना होता है तो मेहनत होती है, परंतु ये तो कदम पर कदम रखना है। कहते फॉलो फादर, फॉलो फादर माना क्या, कदम पर कदम रखो। तो कदमों के निशान होते हैं ना, उस पर कदम रखते चलो। जो बाबा ने किया वो मुझे करना है, जो बाबा ने किया वो मुझे करना। तो जैसे बाबा को सारा समय शिव बाबा याद था, बाबा को सारा समय यज्ञ याद था, बाबा को और कुछ याद नहीं था, शिव बाबा याद था, पूरा याद, पूरा पक्का था उसको। तो मेरे को भी ऐसा सदैव पक्का रहे, सदैव बाबा याद रहे, बाबा का कर्तव्य याद रहे, और कुछ याद नहीं करना, भूल जाना है। ठीक है, ओम शांति।